तस्मिन् कुटे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपायैव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवौकसः तस्मिन् जब वह कुटे अत्यंत मायावी अहिते शत्रु नष्टे नष्ट हो जाता है कृता मूले जड़े कट जाने पर वनस्पतौ वृक्ष बिटपा डाले तथा पत्तियां इव सदृश सुष्यंती सुख जाते हैं विष्णु प्राणा जिनका प्राण विष्णु है दिवौकस देवतागण अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है और उसकी शाखाएं और पत्तियां स्वयं व सूख जाती हैं। उसी प्रकार जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा है अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मुरझा जाएंगे। तात्पर्य यहाँ पर देवताओं तथा असुरों का अंतर बताया गया है। देवता सदैव भगवान के आदेशों का पालन करते हैं जबकि असुरगण उन्हें क्षुब्ध करने या मारने की योजना बनाते हैं। फिर भी कभी कभी असुरगण देवताओं की भगवत कृपा पर पूर्ण निर्भरता की प्रशंसा करते हैं। यह असुरों द्वारा देवताओं का प्रत्यक्ष महिमा गायन है। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की। बहुत छोटा तात्पर्य है लेकिन इस श्लोक का अर्थ तो आप मोटा मोटी समझ ही गए। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि असुर राज हिरण्यकश्यपु जिस भगवत सिद्धांत को ठीक ठीक समझ रहा है उस सिद्धांत को तथा कथित विकसित आज मानव समाज नहीं समझ रहा है। भावना भले उसकी विपरीत है लेकिन सिद्धांत एकदम यथार्थ रूप में समझ रहा है कि समस्त देवताओं का मूल जड़ विष्णु है। यह बात आजकल के तथा कथित धार्मिक नेता लोग भी नहीं समझते हैं जो धर्मावलंबी धर्मध्वजी धर्म का ध्वजा लेकर चलते हैं। बड़े बड़े मंडलेश्वर बड़े बड़े खटू क्या कहते हैं अखाड़ा वाले वे नहीं समझते इस सिद्धांत को जिसको हिरण्यकश्यपु समझ रहा है। भावना उसका भले दूसरा है लेकिन सिद्धांत में कोई गड़बड़ी नहीं है कि विष्णु सारे देवताओं का जड़ है। विष्णु को अगर मार देते हैं तो सारे देवता अपने आप सुख जाएंगे और उसको मारूंगा। मारने का प्लानिंग करते हैं हम मार नहीं सकते सोचने के लिए सभी जीव स्वतंत्र हैं लेकिन करने में समर्थ केवल भगवान है। तो कुछ लोग अनुकूल भाव से सोचते हैं कुछ प्रतिकूल लेकिन यथार्थ का बोध बहुत आवश्यक है। तो यह प्रसंग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध का है दूसरे अध्याय का नौवां श्लोक। यद्यपि इस श्लोक में कहने के लिए बहुत सारे विषय हैं इसकी भूमिका इस रूप में है कि राजस्वीय यज्ञ में जब महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राजस्वीय यज्ञ प्रारंभ किए तो सभी देवता, सभी ब्रह्मर्षि, राजर्षि, बड़े बड़े राजा, पृथ्वी के सभी लोग जुटे हुए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ उपस्थित थे। महाराज युधिष्ठिर का लक्ष्य केवल राजसूय यज्ञ करके भगवत आराधना ही, और इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले दिव्य लोकों की कामना ही नहीं था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, लेकिन भगवान के रूप में उनकी आराधना अब तक नहीं हुई, लोग नहीं पहचान पाए कि कृष्ण भगवान है। तो इसकी स्थापना करना है कि कृष्ण सर्वाराध्य है, यह उनके मनोभीष्ट था मन में। इसलिए अग्र पूजा के रूप में, सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष के रूप में महाराज श्री कृष्ण को घोषित किए। जब ही यह घोषणा हुई कि इस समाज में सबसे प्रथम पूजा श्री कृष्ण की जाएगी, यद्यपि सबका सम्मान किया जाएगा, उस सभा में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, अंगिरा, देवर्षि नारद इत्यादि भी उपस्थित थे। बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े ब्राह्मण, नैष्टिक ब्रह्मचारी, बहुत लोग उपस्थित थे, भीष्म पितामह। लेकिन श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहली की जाएगी, यह घोषणा जब किया गया, और यद्यपि प्रस्ताव रखे सहदेव जी, लेकिन इसका अनुमोदन भीष्म पितामह, युधिष्ठिर आदि सभी लोग किए, जितने लोग उपस्थित थे सब। इस बात को शिशुपाल वहाँ उपस्थित था नहीं सह पाया, जबकि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का संबंधी था, बुआ का लड़का था। जैसे युधिष्ठिर बुआ के लड़के थे, वैसे शिशुपाल भी था, एकदम सगी बुआ, राजा दी देवी का पुत्र था, एक कुंती की थी, था महाराज युधिष्ठिर कुंती के थे और वो दूसरी बुआ की, लेकिन वो कृष्ण का विरोधी था। उस भरी सभा में कृष्ण के अपमान करते हुए उनके दुर्गुणों को कहने लगा, श्री कृष्ण अग्र पूज्य कैसे हैं, बहुत कुछ बोला है, महाभारत में विस्तार से वर्णन है, लेकिन भागवत में संकेत रूप में कहा गया। युधिष्ठिर महाराज की घोषणा सुनते ही शिशुपाल एकदम आग बबूला हो गया, कहने लगा, इस लंपट गवार, जिसकी जाति कोई ठीक नहीं, जिसके बाप का अब तक पता नहीं, यह वसुदेव का पुत्र है कि नंद का, कोई अब तक कन्फ्यूजन ही है, और इस जाति में भी नीच है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा नहीं किया है, केवल फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया, घूम कर आ गया, और साथ ही यह बचपन से ही वेद विरुद्ध कार्यों में लगा हुआ है, कभी अच्छा काम नहीं किया। जहाँ वशिष्ठ उपस्थित है, भीष्म पितामह उपस्थित है, सनकादिक देवर्षि नारद उपस्थित है, वहाँ इसकी अग्र पूजा होगी, बहुत निंदा करने लगा। तो उसके निंदा को सुनकर यद्यपि भीम और अर्जुन बहुत क्रोधित हो रहे थे, लेकिन भगवान संकेत किए, चुपचाप सही है, मैं बुआ जी को वचन दिया हूँ कि इसके 100 गलतियों को माफ करना है। तो ऐसे बोलते गया, वो रुक नहीं रहा था, जब अंत में भगवान उसके 100 गलती पार करते हुए देखे, तो उस भरी सभा में अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर उसका सिर काट लिया। सिर तो कट गया, लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई, उसके शरीर से जो जीवात्मा निकला, दिव्य ज्योति के रूप में वह आकर कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया। तो उस भरी सभा में, जहाँ आध्यात्मिकता से भरा हुआ उस भरी हुई सभा थी, बड़े बड़े विद्वान वहाँ उपस्थित थे, तो महाराज युधिष्ठिर जिज्ञासा करते हैं कि जब से हो संभाला है, तब से कृष्ण का विरोधी है, निंदक है, और ऐसे नास्तिक का यह सदगति जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ होता है। बेन आदि जो कृष्ण निंदक थे, उनको नरक हो गया, और इसको सीधे भगवान का चरण प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों? तो वहाँ देवर्षि नारद को सब लोग कहे कि आप उत्तर दीजिए, तो देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से सातवां स्कंध प्रारंभ होता है। सप्तम स्कंध भागवत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का वर्णन करता है, जिसको उति कहा गया है। भागवत के 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। इस 10 टॉपिक का वर्णन भागवत करता है। संपूर्ण भागवत में 10 विषयों का वर्णन है। सर्ग कहते हैं सृष्टि को, जो भगवान के द्वारा सृष्टि की जाती है उसको सर्ग कहते हैं, और भगवान के बाद जो सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा से लेकर अब तक चल रहा है उसको विसर्ग कहते हैं, सृष्टि का विस्तार। स्थान, जिस अद्भुत दिव्य शक्ति से भगवान सारे जगत को कंट्रोल करते हैं उसको स्थान कहते हैं। जिस कृपा से सारे जगत का पोषण कहते हैं उसको पोषण कहते हैं। और उति कहते हैं कर्म वासना, जीवों के कर्म वासना को भोगने की इच्छा को उति कहते हैं, उतयह कर्म वासना। तो कर्म वासना 3 प्रकार का होता है, एक सद वासना, एक असद वासना और तीसरा मिश्र वासना। जो केवल भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, केवल सत स्वरूप श्री भगवान में लगे हुए हैं, ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस को सद वासना कहते हैं। और जो कृष्णेतर, कृष्ण को छोड़कर अन्य भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, उनको असद वासना कहते हैं। और तीसरा पोजीशन है, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ सत कुछ असत, जिसको मिश्र वासना, मिक्स, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति भी है कुछ भोग की प्रवृत्ति भी है। तो इस सप्तम स्कंद में इन वासनाओं का वर्णन है बराबर बराबर अध्यायों में। 5 अध्यायों में शुरू में असद वासना का वर्णन है, और 5 अध्याय में सद वासना का, और 5 अध्याय में मिश्र वासना का। 15 अध्याय है सप्तम स्कंद में। तो कृष्णेतर विषयों को भोगने में जीव किस प्रकार का विचार रखता है, कैसी योजनाएं बनाता है, क्या सोचता है, इस सब का नेतृत्व करते हुए हिरण्यकश्यपु के चरित्र का वर्णन है शुरू के 5 अध्याय में। और 6वां से 10वां अध्याय तक सद वासना, पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद के चरित्र का वर्णन है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह की योजना बनाता है, क्या सोचता है, क्या करता है, तो प्रहलाद के चरित्र का वर्णन हुआ है सद वासना का। और अंत में संपूर्ण संसार की ओर से मिश्र वासनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न है देवर्षि नारद से कि वर्णाश्रम क्या है, वर्ण और आश्रम से युक्त जो समाज है उसमें स्त्री धर्म क्या है, गृहस्थों का कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है, सन्यासी वानप्रस्थ सबके विषय में पूछते हैं जो मिश्र वासना वाले हैं। तो इस तरह से सप्तम स्कंद उति का वर्णन करता है। तो यहाँ पर देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते हैं, यह क्यों भगवान के चरणों में इसकी दिव्य आत्मा विलीन हो गई। तो उसी क्रम में कहते हैं कि हे महाराज, यह कोई साधारण ऑर्डिनरी जीव नहीं है, यह साक्षात भगवत पार्षद है। जब यह अपने नित्य भगवत सेवा में रह रहा था जय विजय के रूप में, उस समय ब्रह्मा का पुत्र सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ गए, लेकिन उनका वेशभूषा वही 5 वर्ष के बच्चों का है, कोई जंघिया कौपिन भी नहीं पहनते, नंग धड़ंग रहते हैं। अचानक वैकुंठ के मुख्य गेट पर आए प्रवेश करने की इच्छा से, तो जय विजय भगवत पार्षद गेट पर खड़े थे। उनको बच्चा समझकर नहीं समझ पाए, ध्यान नहीं दे पाए, अपना बैग हटा दे, रुको कहाँ जा रहे हो, अपना आईडी दिखाओ, कौन हो, रोक दिए, तो सनकादिकों को अचानक क्रोध हो गया कि इतना नॉनसेंस, बिना योग्यता के लोग वैकुंठ के गेट पर हैं। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति वैकुंठ के दरवाजे पर जा सकता है? वहाँ भी पास दिखाना पड़ेगा, वहाँ तो क्वालिफाइड व्यक्ति ही वहाँ पहुँचेगा ना। तो उनको क्रोध आ गया और वो श्राप दे दिए कि तुम लोग वैकुंठ में ड्यूटी करने लायक नहीं हो, मर्त जगत में जाओ, असुर जोनि में जाओ। जब इस तरह का श्राप श्री भगवान सुने तो आए और आकर अपने परिकरों के ओर से क्षमा याचना किए कि इनके द्वारा की गई भूल हमारी भूल है, आप इन्हें क्षमा कीजिए। तो ये लोग कंसेशन कर दिए कि 3 जीवन तक असुर योनि प्राप्त करके फिर वैकुंठ आ जाएंगे। यहाँ अनलिमिटेड नहीं श्राप मिला, सीमा में था, 3 बार असुर जीवन में आना पड़ेगा। तो हमारे सभी आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी, चक्रवर्ती ठाकुर, सभी लोग कहते हैं कि यह भगवान की इच्छा थी। भगवान सेवा लेते 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 कभी कभी ऊब जाते हैं, जैसे कोई एक ही वेराइटी भोजन करते करते बदलना चाहता है। तो भगवान का केवल सम्मान, केवल आदर, केवल आरती, जय हो रहा है। और भगवान के स्वरूप में कुश्ती भी है, लड़ाई भी है, एक दो हाथ हो जाए तो भगवान वैकुंठ में तो कोई है नहीं ऐसा करने वाला, सब लोग सेवक हैं। तो भगवान की इच्छा हुई कि अपने परिकरों को ही विरोधी भावना में भरते हैं और तब कुश्ती करते हैं, जमकर 28-28 दिन लड़ेंगे। तो भगवान अपने परिकरों की चेतना को विरोधी भावना से थोड़ा सा हटा दिए, अपनी इच्छा से। सब कहते हैं भगवत इच्छा से वहाँ जय विजय का विचार बदला, यह भगवत प्रेरणा है और किसी दूसरे की नहीं। तो भगवत प्रेरणा से सनकादिक श्राप भी दिए। तो इस तरह से भगवान का शरीर में खुजली हो रहा था, कुश्ती करना चाहते थे। तो उस कुश्ती की पूर्ति नगण्य जीव तो कर नहीं कर सकता, कोई भगवान का लेवल का ही व्यक्ति कुश्ती करेगा, जोड़ के पहलवानों में कुश्ती शोभा देती है। तो भगवान के समान बलवान तो भगवान के परिकर ही हो सकते हैं, इसलिए जय विजय को असुर शरीर में जाने की भगवान की इच्छा हुई। तब तो दो हाथ होगा, 3 बार। तो यही प्रथम बार हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने जय विजय। तो उसी क्रम में देवर्षि नारद कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु के रूप में जय आया तो संसार भोगने की लालसा कृष्णेतर भावनाओं में भर गया, सारे जगत में अपने को ईश्वर घोषित कर रहा था। लेकिन इसी हिरण्यकश्यपु का एक बेटा प्रहलाद भगवान का भक्त निकला, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित था, लेकिन उस कृष्ण भावना भावित भक्त से, अपने पुत्र से हिरण्यकश्यपु द्रोह किया। इतना द्रोह बढ़ गया कि उसको जान से मारने की इच्छा हो गई। तब प्लान किया, कोशिश किया उनको मारने के लिए। तब महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर तो हो गया था कि वही शुरू में हिरण्यकश्यपु बना, बाद में रावण कुंभकर्ण और तीसरे बार में शिशुपाल और दंतवक्त्र, और अभी अभी जो शिशुपाल के रूप में इसका शरीर पूरा हुआ और कृष्ण के चरणों में मिल गया, इसकी असुर योनि की समाप्ति हो गई, वैकुंठ गया। लेकिन वैकुंठ से आने के बाद भी भागवत में देखा गया है कि जय विजय अपने ड्यूटी में है, एक रूप से प्राकृत जगत में आए और दूसरे रूप में वहाँ भी हैं। भागवत में इसकी चर्चा है, जब बलि महाराज के जग में बामन देव आए और 2 डेग में संपूर्ण संपत्ति को नाप लिए, 3रा डेग नहीं देने पर बलि को अरेस्ट करने का आदेश दिए गरुड़ जी को, इसको बांध दो। तो जब बांधने लगे गरुड़, तो उस समय असुर लोग बामन देव पर आक्रमण किए। तो जो बलि के सपोर्टर थे वो लोग बामन देव को मारना चाहे, तो उनका विरोध करते हुए जो भगवत पार्षद वहां उपस्थित हुए उनमें जय विजय का भी नाम है, भागवत में जय विजय का भी नाम है। तो अभी जय विजय वैकुंठ नहीं गए थे, अभी तो आगे भविष्य में द्वापर में जाएंगे, तो शुरू में ही वामन देव की लीला है। तो वहां पर हमारे आचार्य चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी आदि कहते हैं कि वैकुंठ में गए हुए परिकरों का कभी पतन नहीं होता, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, वहां से आते नहीं। भगवान की इच्छा से परिकर जरूर आ गए दूसरे रूप में, लेकिन एक रूप में अपने ड्यूटी में भी थे, वे लोग वामन देव के यहाँ उपस्थित हुए हैं स्पष्ट रूप में। जीव गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी भी लिखते हैं। तो इस तरह से ये भगवत पार्षद अब अपने धाम को चले गए, माने असुर शरीर समाप्त हो गया, इसलिए यहाँ उसके कर्तव्य का कोई काउंटिंग नहीं है। और गाली दिया कि अपमान किया कि विरोध किया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब उनका अंतिम जीवन था, ये भगवान के धाम चले गए। तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अच्छा वो तो हो गया, लेकिन एक प्रश्न है, विद्वेषो दैत्य पुत्रे कथम आसीन महात्मनि, ब्रूई में भगवान ने न प्रहलादस्य अच्युतात्मता। हमको ये कौतूहल हो रहा है कि हिरण्यकश्यपु अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से द्रोह क्यों किया। प्रायः सभी बाप अपने बेटे से प्रेम करते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु इतना द्रोह क्यों किया, क्यों शत्रुता बढ़ा लिया। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे, कोई बदमाश तो थे नहीं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, तो इनका विरोध क्यों किया, एक बात। और दूसरी बात कि वैसे असुर के पुत्र प्रहलाद में भक्ति कैसे आ गई। जैसा समाज रहता है वैसा लोगों का संस्कार पड़ता है, संघ का रंग चढ़ता है, तो प्रहलाद में भक्ति कैसे आ गई, कृपा करके बताइए। अब तो महाराज युधिष्ठिर ऐसा प्रश्न कर दिए कि इसका उत्तर पूरा 10 अध्याय में पूरा हुआ। प्रहलाद कैसे भक्त बने, हिरण्यकश्यपु कैसे विरोध किए भगवान का, ये सारी कथा। तो ये दूसरे अध्याय में देवर्षि नारद प्रारंभ करते हैं, बीच से प्रारंभ कर देते हैं, पूरी कथा तो कहने में बहुत देर होगा। कहते अपने भाई हिरण्याक्ष के मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु विष्णु से अस्थाई बैर बांध लिया, भाद्र एवं पिनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना, हिरण्यकश्यपु राजन पर तप्यसा सुचा। बहुत ज्यादा क्रोध आ गया जब विष्णु वराह रूप में आकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिए। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे, तो हिरण्याक्ष का वध वराह मूर्ति से किए भगवान। तब हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, आह चेदम रुषा पूर्ण संदस्त दशनक्षद कोपो ज्वलद्भ्याम चक्षुर्भ्याम निरीक्षण धूम्रमंबरम। इतना क्रोध करने लगा कि उसके क्रोध से दिशाएं जलने लगी, आकाश धूमिल हो गया, और बोलने लगा। हिरण्यकश्यपु तीसरे श्लोक से बोलना प्रारंभ किया है, बहुत सुंदर बात बोल रहा है, एकदम भगवत परिकर है, सिद्धांत में कोई कमी नहीं है, रोल मंच पर भले विपरीत कर रहा है लेकिन भीतर से भगवान का भक्त है, क्योंकि सिद्धांत तो एकदम कंप्लीट बोल रहा है। कह रहा है अपने भयानक क्रोध को दिखाकर अपने संगियों से कह रहा है, भोभो, चौथे श्लोक से बोल रहा है, भोभो दानो दैतेया दीर्मुर्ध्यस प्रक्ष संबर सतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक ईल वाला, संबोधन कर रहा है असुर सेनापतियों को कि हे त्रिमूर्धा, हे सतबाहो, हे है ग्रीव, हे नमुची, हे पाक, हे इलवल, हे विप्रचित, आप हमारे बात को सुनो, हे शकुनी आदि, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसको सुनो, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। और केवल सुनना नहीं है, ध्यान से सुनिए, विचार पूर्वक समझिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए। जैसा मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए और उसके अनुसार कीजिए। सपत्नी घातिना सूत्र भ्राता में दैत सुहित पाशनी ग्रहण हरिणा समय नापी उपधाम नहीं। देखो मेरे भाई का वध विष्णु किया है, वास्तव में विष्णु नहीं वध करता, हिरण्यकश्यपु बोल रहा है, देवताओं ने विष्णु को उकसाया है। साफ साफ कह रहा है कि मेरे क्षुद्र शत्रु उनमें कोई शक्ति नहीं है, देवताओं में कोई क्षमता नहीं है, लेकिन वे लोग हमारे भाई को मारने के लिए विष्णु से पैरवी किए। और यद्यपि विष्णु देवता और दानव के प्रति एक समान व्यवहार वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो समान व्यवहार करता है, वो सुहृद है, दैत है, सबसे प्रेम करता है, सुहृदम सर्वभूतेषु, गीता का सिद्धांत हिरण्यकश्यपु भी बोल रहा है। विष्णु सारे जगत के सभी जीवों का दैत है, सुहृद है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि तीन बात जान जाने पर शांति हो जाएगी, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति इच्छति। जो व्यक्ति शांति चाहता है उसको जानना चाहिए कि मैं सारे यज्ञ तपस्या का एकमात्र भोक्ता हूँ, दूसरा कोई भोक्ता नहीं है। अगर ऐसी गलती कोई दूसरा किया तो पीटा जाएगा। ऐसे हम लोग बनारस में देखते हैं, बहुत पहले जब 81-82 में मैं बनारस पढ़ता था तो वहाँ सांड बहुत घूमते हैं, सांड घूमते रहते हैं, सब्जी मार्केट में भी 2-4-5 सांड घूमते रहते हैं। तो वहाँ दुकानों पर ठेला पर जहाँ तहाँ सब्जी पालक सब रखा रहता है तो जानते हैं मेरे लिए ही है। जेव ही मुँह लगाते हैं सभी दुकानदार लाठी रखे रहते हैं, छड़ी, जेव ही वो खाना चाहते हैं त्यों पीटे जाते हैं। उसी प्रकार इस संसार को भोगने की इच्छा जेव ही जीव करता है त्यों माया पीटती है, क्योंकि भोक्ता तो भगवान है, भोक्ता भगवान है, जीव जेव भोक्ता समझता ते उन बनारस के साढ़ों जैसा पीटा जाता है। कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए दंड जैन राजा जैन नदी छुआए। तो विष्णु भोक्ता है, कृष्ण भोक्ता है। भोक्ता क्यों है तो कहते हैं क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम, सारे जगत में जो कुछ भी प्रॉपर्टी किसी के नाम से बैंक बैलेंस है मेरा है। बीच में मूर्खतापूर्ण बंटवारा कर लेने से आपका नहीं हो गया, सारी प्रॉपर्टी हमारी है। सर्वलोक महेश्वरम, प्राकृत अप्राकृत सारे लोक का महाईश्वर महाकंट्रोलर मैं हूँ। हो सकता है वार्ड कमिश्नर से लेकर ब्रह्मा तक बहुत ईश्वर है, विधायक, एमपी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बहुत ईश्वर हैं, और देवता इंद्र वरुण कुबेर दिग्पाल सब ईश्वर हैं, लेकिन भगवान मना नहीं कर रहे हैं, ईश्वर तो बहुत हैं, लेकिन मैं महा ईश्वर हूँ, सबका कंट्रोलर, सर्वलोक महेश्वर हूँ। और तो इसका मतलब कि आप धमकी दे रहे हैं कि नहीं भजन करने पर कंट्रोल करेंगे, शासन करेंगे, तो कहने नहीं नहीं केवल ये बात नहीं है, सुहृदम सर्वभूतेषु, सारे जीवों का एकमात्र सुहृद हूँ, माता के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत जितनी सुख सुविधा चाहिए उसका सप्लायर मैं हूँ। झूठे भ्रम मत करो कि दूसरे लोग सुहृद हैं, मैं सुहृद हूँ। जहाँ माता पिता की बुद्धि काम नहीं करती वहाँ भी मैं सौहार्द करता हूँ। माँ नहीं जानती है कि मेरे बच्चे का पोषण कैसे हमारे पेट में हो रहा है, वहाँ भी भगवान करते हैं बड़े वैज्ञानिक ढंग से। माता के छोटी आँख से बच्चे के नाभि तक नली बना रहता है, और जो भी खाती है और रस बनता है उसको दो भाग में सप्लाई होता है, माँ के शरीर के लिए, बच्चे के शरीर के लिए। भगवान कपिल देव कह रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं माता देवती को कि कैसे गर्भ में जीवों का पालन होता है, माँ ये सौहार्द है मेरा। एक बेटा और माँ में कथा चल रहा है, बेटा प्रवचन कर रहा है, माँ चुपचाप सुन रही है, कहते कहते भगवान आवेश में आ जाते हैं कपिल देव, तू सब कुछ करता है, कहते तब मत भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मत भयात, मेरे भय से सूर्य में प्रकाश है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से पवन देव सबके नाकों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। मत भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मत भयात। अरे अब देवती को पता चल गया कि मेरा बेटा भगवान है, तो पहले से जानती थी। तो यह है भगवान का प्रवचन, कहते हैं मैं सबका पालन करता हूँ गर्भ से लेकर जीवन भर। तो ये जानना जरूरी है गीता का संदेश। और यहाँ कह रहा है कि मैं दैत सुहृद, ओम विष्णु हमारा भी दैत है, हमारा भी प्रिय है, हमारा भी सुहृद है। लेकिन पाषणी ग्रहण हरिणा समय नाप्यू धाम नहीं उपधाम नहीं, ये देवता लोग इतना दौड़ लगाए उसके पास, इतना दौड़ लगाए, बार बार उसके पास गए, बेचारा परेशान होकर उनका पक्ष ले लिया। ऐसे वो सुहृद है, सबका सुहृद है, लेकिन देवताओं ने उसको अपने तरफ कर लिया। चापलूसी करते हैं देवता लोग, चापलूस हैं। हम स्वाभिमानी व्यक्ति, हम चापलूसी किसी का नहीं करते, इसलिए हम कमजोर पड़ गए और विष्णु उनका पक्ष ले लिया। तस्य त्यक्त स्वभावस्य, देवताओं के उपधावन के कारण, बार बार जाने के कारण विष्णु अपना स्वभाव छोड़ दिया। बदल जाता है आदमी, पहले ठीक था, कहता है कि स्वभाव छोड़ दिया और घृणे माया बनो कसा, देखो अपना असली स्वरूप छोड़कर माया का आश्रय लेकर वह वराह बन गया, सुकर बन गया। कहाँ विष्णु वैकुंठ में फर्स्ट क्लास रूप में रहता है, सुअर बन गया। और भजंतम भजमानस्य, भजन करने वाला का फेवर करने लगा। बाल सेवा वस्थिरात्मन, बच्चों जैसा, मिठाई पर जैसे बच्चे फुसिल जाते हैं, वैसे विष्णु बदल गया। अब उसका अस्तित्व तो नहीं रह गया, जो पहले का बड़प्पन था ना वो चला गया। जो घूस पर कुछ देने पर बदल जाए उसका बड़प्पन क्या है। विष्णु बच्चों जैसे, बच्चे के जैसे मिठाई देकर लोग जो करना चाहे करा सकते हैं, वैसे बदल गया। तो अब क्या किया जाए, कहते हैं अब तुम लोगों की बात नहीं, मैं कहता हूं सुनो, मैं अपने त्रिशूल से उसका गला काटूंगा, घृणा रुधिरेण वही, और उसके मेरे त्रिशूल से जब उसका गर्दन कटेगा और उसके शरीर से खून निकलेगा, उस खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा। क्या समझ रहे हो, पानी दूंगा अपने भाई के लिए, पानी से तर्पण नहीं करूंगा, विष्णु के शरीर से निकलने वाले खून जब निकलेगा उसके गर्दन कटने पर, तो उस खून को अपने भाई के लिए तर्पण दूंगा। इस तरह कह रहा है। और फिर और जब विष्णु मारा जाएगा तब जानते हो क्या होगा, इंद्र आदि देवता तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तस्मिन कुटे हिदे नष्टे कृत मूले वनस्पतौ, जैसे पेड़ का जड़ कट जाए तो ऊपर टना तहन टहनी पत्ता फूल सब अपने आप सूख जाता है। बिटपा युव सुष्यंति, जैसे वृक्ष सूख जाते हैं जड़ कटने पर, मूल कट जाने पर, कृत मूले वनस्पतौ, जैसे किसी पौधा का, किसी पेड़ का जड़ कट जाए तो टना पत्ती फूल सब अपने आप मर जाते हैं, वैसे मर जाएंगे सब। विष्णु प्राण दिवो कसर, विष्णु ही सारे देवताओं का प्राण है, और वो जब मर जाएगा तो देवता तो अपने आप समाप्त। तो इस तरह की बात हिरण्यकश्यपु बोल रहा है, यद्यपि विरोधी भावना में बोल रहा है लेकिन फर्स्ट क्लास सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को परिचिताओं के संदर्भ में भागवत में आया है। नारद जी कहते हैं परिचिताओं को उपदेश देते हुए, भक्ति के सर्वश्रेष्ठ आचार्य अनुकूल भाव से जो बात बोल रहे हैं वही बात हिरण्यकश्यपु प्रतिकूल भाव से बोल रहा है, लेकिन सिद्धांत में कोई कमी नहीं है। यथा तरोर मूल निषेच ने न तृप्यंत तस्कंद भुजो पशाखा प्राणोपहारस्य जथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणाम् अच्युतेज्या। ये प्रचेताओं से देवर्षि नारद बोल रहे हैं, भक्ति के आचार्य कहते हैं कि जैसे यथा तरोर मूल निषेच ने न, जैसे किसी वृक्ष की सिंचाई करना है तो उसके मूल में ही पानी डालना पड़ेगा, जड़ में। संपूर्ण वृक्ष को हरा भरा रखना चाहते हैं, अच्छा पुष्ट फल आवे, फूल आवे, पत्तियां हरी रहे, टहलनियां मजबूत रहे, तो एक उपाय है कि उसके जड़ में खाद पानी डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पत्ती को हरा भरा रखना चाहते हैं तो पत्ता पर पानी गिराएंगे, ऐसा नहीं होता है, जड़ में। और दूसरा उदाहरण देते हैं, जब तरु के मूल में जल डालते हैं तो सारा स्कंद, भुजो, पशाखा सब कुछ तृप्त हो जाता है। अब प्राणोपहारास जथे इंद्रियाणाम, जैसे समस्त इंद्रियों को, शरीर के सभी अंग को ठीक रखना है तो पेट में भोजन डालना पड़ेगा, मुख में। प्राणोपहारास जथे इंद्रियाणाम, आंख एकदम ठीक रहे, हाथ स्वस्थ रहे, पैर स्वस्थ रहे, कान ठीक से काम करे, तो इसके लिए मुंह में डालना पड़ेगा दूध, सब्जी, फल फूल, फ्रूट, रोटी चावल सब कुछ मुंह में डालना पड़ता है, तो सबको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आँख से कुछ कमजोर दिख रहा है तो गर्म दूध लाकर आँख में डाल दें, ऐसा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। या कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो कान में दूध डालने लगे, ऐसा नहीं होता है। केवल मुंह में डालने पर सारे इंद्रियों को सप्लाई हो जाएगा, सबको मिल जाएगा। वैसे ही तथैव सर्वारण मच्छुते जा, सभी देवी देवताओं को, पितरों को, संपूर्ण विश्व को अगर संतुष्ट करना है तो अच्युत की इज्जा करना पड़ेगा, कृष्ण का, भगवान के जब भजन करेंगे तो सबका हो जाएगा, सबका। भागवत में एक जगह एकादश स्कंद में नवजोगेंद्र संवाद में कहा गया है, करभाजन जी कहते हैं कि सभी जीवों के ऊपर ऋण है, सभी जीव ऋणी है, और उन ऋणों को तीन भाग में बांटा गया है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि अगर कोई जीव कहते हैं कि ऐसे तो सभी जीव ऋणी है और बहुत सारे ऋण है, लेकिन मुख्य ऋणों को बतला रहे हैं। देवर्षि भूतात्म निर्णाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित करतम। सारे जीव ऋणी है, उसमें मुख्य रूप से पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, तीन ऋण प्रधान है, लोन है सभी जीवों पर। पहला लोन है पिताओं का, माता पिता का ऋण है। पितृ में माता पिता सब आ जाते हैं, दादा परदादा भी जितने हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दादा परदादा का है, जो पिताजी उसका उपभोग किए और फिर वो हमको मिल गया, तो उन पूर्वजों का ऋण है, उसको पितृ ऋण कहते हैं। जो गर्भ से लेकर जीवन तक पालन पोषण की उस माता का ऋण है, उसको हम किस कुछ खास पैसों से नहीं पूरा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऋण है माता पिता का। और इसके साथ साथ देवताओं का ऋण है, देवताओं का ऋण है। देखिए अभी कुछ घंटों के बाद रात्रि हो जाएगी तो प्रकाश के लिए हमको अलग साधन जुटाना पड़ेगा, बिजली, टार्च, उसमें पैसा लगता है, बिजली का बिल भरना पड़ता है। लेकिन दिन में जो सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, उसका आज तक किसी के पास बिल नहीं आया, फ्री। तो क्या मतलब है, सूर्य का ऋण है ना, वो भले वसूल नहीं कर रहे हैं लेकिन सूर्य का ऋण है। थोड़ा सा टार्च चाहिए तो उसको खरीदने में पैसा लगेगा, उसके बैटरी का पैसा लगेगा, और फ्री में सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, उसका कोई लोन नहीं है, निश्चित रूप से लोन है। और इसी प्रकार पवन देव का ऋण है, भोजन के बिना, पानी के बिना, प्रकाश के बिना भी हम कुछ घंटे जी सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम आधा घंटा भी नहीं जिएंगे। जिसके लिए कोई दुकान नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई खेती नहीं, फ्री दिया जा रहा है, पवन देव का ऋण है। इंद्र का ऋण है, बारिश कर रहे हैं, सारी औषधियाँ, सारे अनाज, सारे फल फूल भगवान इंद्र के कृपा से पृथ्वी में उग रहा है, नदियों में पानी है, इंद्र के कृपा से बारिश करते हैं, उनका ऋण है। उसी प्रकार सभी देवताओं का ऋण है कुछ न कुछ, तो ये देव ऋण है। और एक ऋण है ऋषि ऋण। भगवत गीता हम 100 रुपया में खरीद लेते हैं तो उसके प्रिंटिंग का कागज का दाम देते हैं, लेकिन उसमें दिया गया जो ज्ञान है उसका दाम नहीं देते हैं, वो तो फ्री है। भगवान कृष्ण के उपदेश का ऋण है, महर्षि व्यास देव का ऋण है, देवर्षि नारद का ऋण है, ये है ऋषि ऋण। तो कह रहे हैं कि देवताओं का, अरे देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का ऋण तो है, जीवों का ऋण भी है, भूतात्मा भूतों का ऋण है। हम लोग गांव में शहर में निश्चिंत सोते हैं, लेकिन अगर जंगल में रहना पड़े तो भय लगने लगेगा, डर लगेगा, कोई भूत प्रेत ना आ जाए, कोई हिंसक जानवर ना आ जाए, कोई अजगर सांप ना आ जाए, कुछ भय लगता है। और यहाँ निश्चिंतता क्यों है, एक दूसरे से दूसरा निश्चिंत है, प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक परिणय है। सभी लोग कपड़ा नहीं बनाते लेकिन पहनते सब लोग हैं, तो कपड़ा बनाने वाला का ऋण है ना। सभी लोग खेती नहीं करते लेकिन भोजन सब करते हैं, तो उस कृषकों का ऋण है। सभी लोग दवा नहीं बनाते लेकिन बीमार हो जाने पर दवा मिल जाता है, तो इस प्रकार सबका ऋण है। यहाँ तक कि जलचर जीवों का ऋण है, जो पानी को शुद्ध करते हैं, तो मछली आदि का भी ऋण है। तो इन ऋणों को एक एक करके अगर हम नो ड्यूज करना चाहें तो संभव नहीं है, वो ऋण रहेगा ही। तब उपाय क्या है कि सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। ये तुमसे ऋण चुकने वाला नहीं है, सभी भावनाओं से सर्वात्मना या शरणम शरण्यम सभी प्रकार से आत्मसमर्पण करो। गतो मुकुंदम परिहृत करतम, मुकुंद के शरण में जाने पर, कृष्ण के शरण में जाने पर सारा ऋण का शोधन हो जाएगा, एक जगह ही सारे ऋणों का नो ड्यूज हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इन कर्तव्यों के झमेले को छोड़ो, ये करना वो करना इनका उनका ये सब फॉर्मालिटी छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुमको सारे जिम्मेवारियों से पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, सोच मत करो। इतना बड़ा आश्वासन स्वयं भगवान दे रहे हैं, ये हंसी मजाक थोड़े हैं, गप नहीं कर रहे हैं, भगवान फैक्ट बोल रहे हैं, एकदम सत्य। इसके पहले भगवान कसम खाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। करें हे अर्जुन, हंसी मजाक में कभी कभी झूठ चलता है मित्रों के बीच, लेकिन यहाँ सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम मेरे मित्र हो, तुमसे झूठ थोड़े बोलूँगा। और दूसरे लोगों के साथ कुछ चल सकता है लेकिन अपने लोगों से झूठ नहीं बोला जाता। तो कहते तुम प्रिय मेरे हो, मन अगर मुझ में लगाओगे, मेरा भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, तो एकदम सत्य कहता हूँ तुम मेरे पास आओगे। प्रति जाने, प्रति जाने में प्रतिज्ञा पूर्वक कसम खाकर कहता हूँ तुम मेरे पास आओगे, एकदम कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरे पास आओगे। तो इतना कहकर पूरा नहीं हुआ, फिर कहते हैं ठीक उसके तुरंत बाद, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सारे जिम्मेवारियों को छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ। और इससे जो तुमको भय है कि दोष लगेगा, बिल्कुल नहीं, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। तो भगवान बहुत सुंदर भाषण किए गीता का, लेकिन वैकुंठ गोलोक जाने के बाद सोचने लगे कि यार इसको अप्लाई कैसे किया जाए, लोग मानेंगे नहीं, भाषण से थोड़े मानेंगे, इसको तो व्यवहार में लाना पड़ेगा। अपने न कैल धर्म सिखन न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। भगवान सोचने लगे यार इसको तो लोग मान नहीं रहे हैं, चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो स्वयं भगवान भक्त रूप में आए और आ करके 70 वर्षीय माँ और 16-17 वर्षीय ज्योति पत्नी को छोड़कर संन्यास ले लिए। ये है सर्वधर्मान परित्यजा चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखा दिए। भक्ति किसको कहते हैं? मन कैसे भगवान में लगाना चाहिए, कैसे कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, सारे आचरण करके दिखाए तो भगवान के शरण लेने पर सारा ऋण समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान जड़ है, जड़ में पानी देने से सबको, सारे पेड़ पौधा को मिल जाएगा। तो इस प्रकार सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। तो हिरण्यकश्यपु सिद्धांत बोल रहा है कि विष्णु सबका जड़ है। दुख की बात है कि बहुत से धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग धर्म का आचरण तो जरूर करते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझते कि विष्णु ही जड़ है, कृष्ण ही जड़ है। और कृष्ण की आराधना से देवी दुर्गा की आराधना, शिव की आराधना, सबकी आराधना हो जाएगी। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम किसी देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं, किसी तांत्रिक निर्मल बाबा जैसे लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, तो अपने को धोखा देते हैं, क्योंकि वहाँ हमको स्वाभाविक सुख नहीं मिल पाता है, वो तो निश्चित नष्ट होने वाला है। इसलिए भगवान के शरण में आना चाहिए। अगर कोई कामना है तब भी भगवान के शरण में आना चाहिए, नहीं कामना है तो तब बेस्ट, तब भी आना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। किसी भी अवस्था में भगवान का शरण लेना चाहिए, यही बुद्धिमता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर कामना है, छोटी छोटी कामना है, तब भी इनके शरण में आओ। भगवान भी कहते हैं कि क्या करें, हमारे भक्त चार प्रकार के होते हैं, कामना वाले भी होते हैं, उनके मन में आता है कि चलो भगवान से मांग लो, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी कई तरह के लोग होते हैं। किसी को कोई दुख है तो मेरे शरण में आ जाता है, कुछ मांगता है, मैं जानता हूँ बेचारा समझ नहीं रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर स्वभाव चतुर्विधा भजन्ते माम। चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, चलो ठीक है, किसी भी तरह भगवान के शरण में आए ये सेफेस्ट मार्ग है, वहाँ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूल कृष्ण है, जड़ कृष्ण है। सबके पास जो देवी देवताओं के पास वरदान का क्षमता है वो इसी पावर हाउस से आ रहा है, वे लोग अपने बल से नहीं कुछ करते, वो दूसरे भगवान के बल से काम करते हैं। तो सारे बल के मूल स्रोत जो भगवान है उनका शरण क्यों न लिया जाए। हिरण्यकश्यपु आगे पूछेगा प्रहलाद महाराज से कि आश्चर्य की बात है, जिनके आंखों को देखकर त्रिलोकी कांपता है, मेरे भाव टेढ़ा करने पर सारे त्रिलोकी अपने लोकेश्वरों के साथ, अधिपतियों के साथ कांपते हैं और तुमको कोई भय नहीं है, तुम किसके बलबूते पर इतना निश्चिंत हो? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं न केवलम में भवतस्य राजन, केवल मैं ही नहीं, आपके पास भी जो बल का सप्लाई हो रहा है ना उसी पावर हाउस से, चाहे बल्ब 0 वाट से लेकर 100 वाट 50 वाट या 1000 वाट का हो, लेकिन करंट तो एक ही पावर हाउस से आ रहा है। अगर उसे कनेक्शन काट दिया जाए तो 1000 वाट का बल्ब लटका रह जाएगा, प्रकाश नहीं आएगा। आप जो त्रिलोकी को कपाने वाला बल दिखा रहे हैं वो भी वहीं से आ रहा है जहां से मेरे पास आता है, लेकिन संजोग की बात है कि मैं उसको समझता हूं। और हे असुर राज, तुम मूर्खता में नहीं समझ रहे हो, अंतर इतना है। अच्छा तो यही है कि तुम भी समझ जाओ। तो हिरण्यकश्यपु कहा अच्छा कहां है तुम्हारा विष्णु हरि? सब में है, आपके अंदर, आप जो खड़क दिखा रहे हैं उसमें, इस खंभे में, मुझ में, सब जगह। तब उसको गुस्सा आया, खींच कर खंभे को मारा, इसमें है। तो भगवान वहां से निकल गए। सत्यम विधातु निजभृत भाषितम, अपना भक्त बोल दिया तो खंभे से निकल आए, कणकण में अपनी व्याप्ति को दिखा दिए, सब जगह हम हैं, ठीक कह रहा है प्रहलाद। तो इस तरह से भगवान कि शक्ति से ही सारे शक्तिमान हैं सब जगह। और भगवान की भक्ति एक महत्वपूर्ण बात है, सेफेस्ट मार्ग है। अगर आप देवताओं की आराधना करते हैं तो हो सकता है कि देवता लोग किसी समय आपसे असंतुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो विपरीत फल मिल जाता है। लेकिन भगवान का एक विशेष गुण है कि वो नाराज होते ही नहीं। वे जानते हैं जीवों की कैपेसिटी कि ये बेचारा असक्षम व्यक्ति है, कितना करेगा, अपनी क्षमता भर कर रहा है। रहती न प्रभुचित चूक किए कि करत सुरति सौ बार ही है कि भगवान अपने भक्तों के दोष को देखते ही नहीं, केवल यही देखते हैं कि यह मुझको प्रणाम किया था, यह मेरे लिए नाम जपा था, मेरी सेवा किया था अपनी क्षमता भर। भगवान केवल उसके गुणों को देखते हैं, दोष को देखते ही नहीं, कभी दोष नहीं देखते। अगर दोष देखते तो ऐसा नहीं कहते कि अपिचेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। जब गीता प्रवचन कर रहे हैं तो बोल दिए अपने भक्तों के फेवर में, हो सकता है कुछ ऐसे मेरे भक्त बदमाश निकले जो भजन करते हुए भी उटपटांग काम करेंगे तो प्रमाणिकता का मोहर लगाते हैं, देखो मेरा भजन करने वाला कदाचित अनुचित भी करे तब भी साधु मानने लायक है। साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। यहाँ तक कहते हैं अपि चेतसो दुराचारो, वो सदाचार से हटकर दुराचार में लिप्त है, कुछ गलतियां हो रही हैं भक्तों से, तो कहते हैं कि फिर भी वो साधु मानने लायक है। इतना भारी पक्षपात, बस आपका भक्त हो गया तो कुछ भी करे? तो कहते हैं कि नहीं, सम्यक व्यवस्थितो ही स, उसकी जो संकल्प है, निर्णय है, वो फर्स्ट क्लास है, वो मेरा भजन करता है और बाद में उसको सुधरने का चांस है। अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसको नरक नहीं भेजते हैं, उसको सुधारने का चांस देते हैं। अगर इस जीवन में नहीं सुधरा तो बाद में सुचि नाम श्रीमताम गेहे जो भ्रष्ट हो भी जाए थे, फिर से उसको चांस देंगे। लेकिन साधु है, उसको साधु मानना चाहिए, भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ मार्ग है। इस बात को देवता लोग भी स्वीकार करते हैं, असुर लोग भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तथाकथित धार्मिक लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अलग अलग पाखंड में पड़े हुए हैं देवता लोग। पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में जहां भारत वर्ष का वर्णन है, वहां कह रहे हैं कि हम लोग भी देते हैं भजन करने वाले को और भगवान भी देते हैं, लेकिन हमारे देने में और भगवान के देने में अंतर है। सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो निराम नैवार्थदो जत पुनरर्थिता जतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। भगवान देते हैं, सत्य है, जो कोई उनसे मांगता है उसको देते हैं। सत्यम दिशति देते हैं, सत्यम दिशति अर्थितमर्थितो निराम, जो प्रार्थना में मांगा जाता है, प्रार्थी व्यक्ति जो चाहता है वो भगवान देते हैं। लेकिन न एव अर्थद, लेकिन भगवान अपने को दाता नहीं मानते, लाचारी मानते हैं। अब भक्त बार बार कह रहा है कि हे प्रभु, हमको विवाह करना है, हमारे लिए कोई स्त्री की व्यवस्था कर दीजिए। तो कर देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि क्या बेवकूफ मांग रहा है। अब बार बार कह रहा है तो करा देते हैं विवाह, लेकिन फिर क्या समस्या है कि बाद में कहता है प्रभु 7-8 वर्ष हो गया, संतान ही नहीं हो रहा है, एक लड़का चाहिए। अरे विवाह से काम पूरा नहीं हुआ, संतान हो गया तो कहता है मेरे बेटे को धन चाहिए, सर्विस चाहिए, नौकरी चाहिए, वो भिखमंगी छोड़ता नहीं है। तो भगवान सोचते हैं कि क्या करें यार, इसको ये मांगना छोड़ नहीं रहा है। तो भगवान न ये वो अर्थ द, अपने को दाता नहीं मानते। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, भजन करने वाले की इच्छा नहीं है फिर भी देते हैं। क्या देते हैं? इच्छा पिधानम निजपाद पल्लुम, समस्त इच्छाओं को ढक देने वाला अपना चरण कमल। यह है भगवान की विशेषता, देवता लोग नहीं कर सकते। ध्रुव चला था अपने पिता से भी उत्कृष्ट संपत्ति लेने के लिए, 6 महीना जम कर भजन किया, भगवान आ गए। भगवान जब सामने आए तो ध्रुव अपना संकल्प बदलने लगा, नहीं प्रभु मुझसे गलती हो गई, सॉरी क्षमा कीजिए, मेरी बुद्धि देवताओं ने हर ली, मैं उचित अनुचित का निर्णय नहीं ले पाया, मुझसे गलती हो गई, मैं चला था कांच ढूंढने लेकिन रत्न मिल गए, तो मैं कांच लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों का भक्ति चाहिए, आप चाहिए मुझको। तो भगवान कहे, अरे देखो ये तो ध्रुव फंसा दिया, अगर मैं अपना धाम दे दूं, इसको बैकुंठ ले जाऊं, तो दुनिया के लोग यही कहेंगे कि देखो बेचारा 5 वर्ष का बच्चा भजन किया और विष्णु आकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया। तो कहे, नहीं नहीं ध्रुव, मेरे इज्जत पर भी ध्यान रखो, तुम तो समझ रहे हो, अब तो समझ गया शंख का स्पर्श करते हैं कि राज वैभव क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, समझ गया, ठीक है, लेकिन बेटा तुमको अपने पिता के राज सिंहासन पर 36,000 वर्ष राज करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ बैकुंठ तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री कर देता हूँ, ध्रुव लोक से जाना जाएगा, इसके बाद तुमको बैकुंठ लोक मिलेगा, ध्रुव लोक, और वह लोक इस प्राकृत जगत में दिखेगा और सारे सप्तर्षि लोग उसकी परिक्रमा करेंगे, महाप्रलय के समय भी वह नष्ट नहीं होगा। वो ध्रुव लोक चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वो लोक पहले से था लेकिन रजिस्टरी अब हुआ ध्रुव के नाम से। तो ध्रुव का दो अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ध्रुव माने जिसका कभी विनाश ना हो, माने बैकुंठ, ध्रुव का पर्याय है बैकुंठ, बैकुंठ का ही पर्याय है ध्रुव लोक, लेकिन ध्रुव भजन किया था तो इसके नाम से रजिस्ट्री कर दिए, चलो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह भगवान देते हैं, लेकिन जब तक ध्रुव लोक नहीं दिए तब तक नहीं संतोष किए, देते हैं लेकिन इच्छा पिधानम, इच्छाओं को ढक देने वाला अपना चरण कमल देते हैं। इसी श्लोक का अनुवाद चैतन्य महाप्रभु करते हैं सनातन गोस्वामी से, कहते हैं, कृष्ण कहे अमार भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे से ही बड़ मूर्ख, आमी विज्ञ से ही मूर्खे विषय के न दिव, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि हमारा भजन कर रहा है और हमसे मांग रहा है विषय सुख, कभी धन मांगता है, कभी पुत्र मांगता है, कभी कुछ मांगता है, मांगता रहता है, तो मूर्ख है, नहीं जानता कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। बड़े व्यक्ति से किसी देश के प्राइम मिनिस्टर से राष्ट्रपति के पास आप गए और खुश हैं, बोलो क्या चाहिए, तो व्यक्ति कहे कि हमारे पास एक गाय है, इस समय अकाल पड़ गया है, एक दिन के चारा दे दीजिए, भूसी भूस दे दीजिए अपने गाय के लिए, तो ये अपमान है ना राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, तुम पूरा गौशाला चलाने के लिए खर्चा मांग लो एक बार में, जब बलि जैसा व्यक्ति अपने को इंसल्ट महसूस कर रहा है, कह रहा है कि तुम तो मेरे तरफ तो देखा नहीं, बस 3 डेग भूमि चाहिए, अरे मैं कौन हूँ, मेरे तरफ भी देखो, लोका नाम में कुमेश्वर हूँ। भगवान कहे कि अभी ऐठन छोड़ा दूंगा, 3 डेग 2 डेग में ही सब कुछ नाप लूंगा, तीनों लोग का मालिक बन रहा है ना, कह रहा है लोका नाम में कुमेश्वर हूँ, तीनों लोग का एकमात्र ईश्वर हूँ, और यही नहीं बलि यहाँ तक कह दिए, जो व्यक्ति एक बार मेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर आ जाता है उसका जीवन भर का भिखमंगी समाप्त कर देता हूँ, अगर तुम मेरे पास आने के बाद दूसरे के पास हाथ पसारेगा, अभी 3 डेग माना मांगा, कल कुटिया बनाने के लिए कलेक्शन करने निकलेगा तो मेरी बेइज्जती मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एक बार में जो चाहिए मांग, तुमको घर चाहिए, भवन चाहिए, और कहीं फिर विवाह के चक्कर में पड़ेगा तो तुमको ब्राह्मण की कन्या भी मैं दिला दूंगा, जो चाहिए मांग लो, किसके सामने आया है कुछ मेरे तरफ भी देखो। जब बलि जैसा एक नगण्य व्यक्ति इतना दावा कर रहा है, और जो सर्व लोक महेश्वर है उनसे अगर कोई थोड़ा चीज मांगे तो इंसल्ट नहीं महसूस करेंगे। कहते हैं कृष्ण कहे अमार भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ विष मांगे से ही बड़ मूर्ख, मेरे पास अमृत की भी शीशी है और वो एल्ड्रिन का शीशी उठा रहा है, क्या मूर्खता है। तो चलो मांग लिया बेचारा अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन भगवान कहते हैं आमी विज्ञ, ভক্ত মূর্খ হয় না, মাই তো বুদ্ধিমান হ, আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব, উসকে মাংনে সে বিষয় দে দুঙ্গা, বিলকুল নাই, স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব, আপনা চরণ কমল দুঙ্গা, জেউহি চরণ কমল কো প্রাপ্ত করেগা ভুল যায়গা বিষয় কো, পরম দৃষ্টবা নিবর্ততে, উৎকৃষ্ট বস্তু জব ব্যক্তি কো মিল জাতা হয় তো নিকৃষ্ট আপনে আপ ছোড় দেতা হয়। জীব গোস্বামী লিখতে হ্যায় কি জৈসে ইস শ্লোক সত্যম বিধাতু নিজ ভৃত ভাষিতম সত্যম দিশতি অর্থিতম অর্থিতো নৃণাম, ইস শ্লোক পর লিখতে হ্যায় কি জৈসে স্নেহময়ী জননী মা আপনে নাদান বচ্চে কো দেখতি হয় আর ওহ বচ্চা অচানক মিট্টি উঠাকর খানে লগতা হয়, জানতা হয় কি সবসে স্বাদিষ্ট চিজ খা রহা হুঁ, বাস্তব মে মিট্টি মে ভি স্বাদ হয়, জো গেহুঁ মে অনাজ মে মিট্টি আতা হয়, পহলে তো জো আতা থা উসমে বাস্তব মে টেস্ট হয়, আজ ভি মুঝে ইয়াদ হয়, তো উসকো ছুপা কর খাতে হ্যায় বচ্চে, লেকিন মা কো পতা চল যায় কি বচ্চে মিট্টি খাতে হ্যায় তো ছিননা চাহতি হয়, লেকিন বচ্চে কে হাত সে মিট্টি ছিনে পর রোনে লগেগা, ও তো সবসে টেস্টফুল চিজ খা রহা হয় আপনে দিমাগ সে, লেকিন মা উসকো মিট্টি নাহি খানে দেতি হয়, তব ক্যা করতি হয়, তো এক বুদ্ধিমানি করতি হয় কি উসকো ছিনে পর তো রোয়েগা, বহুত দের তক রোয়েগা, তব উসসে উৎকৃষ্ট মিশ্রি ইয়া গুড় কোই মিঠা চিজ বিস্কুট আদি লাকর দেতি হয় উসকে হাত, বেটা ইসকো লে না, মিট্টি কে সামনে লেনা ভি নাহি চাহতা, কিসি তরহ উসকে জীব পর স্পর্শ করাতি হয়, জে ওহি মিশ্রি কা স্বাদ মিল জাতা হয় তে মিট্টি ছোড় দেতা হয়, সমঝ জাতা হয় কি জাদা উৎকৃষ্ট হয়, তো ভগবান আপনে ভক্তি কা টেস্ট দেতে হয়, আর ইচ্ছা বিধানম, ইচ্ছা কো ঢকনে বালা বিধান কহে, বিধান সংস্কৃত মে হয় ঢক্কন, আর উসি কো ভোজপুরি ভোজপুরি মে পেহান কহতে হয়, বিধান জো ঢক দেতা হয় ইচ্ছাও কো সমাপ্ত কর দেনে বালা, বিধানম ইচ্ছা বিধানম, ও পেহান ক্যা হয়, ইচ্ছা কা ঢক্কন, নিজ পাদ পল্লম আপনা চরণ কমল, নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজ সে কহনে লগে কি বেটা কুছ মাং লো মেরা স্বভাব হয়, প্রহ্লাদ মহারাজ কো বড়া গুসা আ রহা হ্যায়, ক্যা কহ রহে হ্যায়, মাই কুছ মাংনে কে লিয়ে ভজন কিয়া হুঁ, দে মাঙ্গো বেটা, তো প্রহ্লাদ গুসা মে বোল রহে মুঝকো বনিয়া সমঝ রহে হ্যায় ক্যা, মাই বনিয়া নাহি হুঁ, সৌদা করনে নাহি আয়া হুঁ কি কুছ বদলে মে চাহিয়ে, কহতে হ্যায় ই তো বড়া নারাজ হো রহা হ্যায়, কহে তুমকো জরুর নাহি চাহিয়ে, লেকিন মাই বিনা দিয়ে নাহি রহ সকতা হুঁ, মেরা স্বভাব হ্যায় বেটা কুছ মাঙ্গ লো, কুছ মাঙ্গ লো, জো মাঙ্গ লো, মেরা ইজ্জত তো রখো কম সে কম মাঙ্গ লো, তো প্রহ্লাদ কহতে হ্যায় ঠিক হ্যায় আপ নাহি মানেঙ্গে তো দে দিজিয়ে, ক্যা দে দিজিয়ে, কভি ভি কিসি ভি বস্তু কি কামনা মেরে মন মে না হো, এ বরদান দিজিয়ে, পুরা নিষ্কামতা কা বরদান, কহে ঠিক হ্যায় তথাস্তু, ফির প্রহ্লাদ কো ইয়াদ আয়া কি মেরা পিতা তো বড়া অপরাধ কিয়া হ্যায়, ভগবান কে প্রতি ভক্তো কে প্রতি, কহে মেরে পিতা কি গলতিও কো মাফ কর দিজিয়ে, ইসকো দুর্গতি নাহি হোনা চাহিয়ে, তো কহে কি আরে প্রহ্লাদ তুমারে পিতা তো দুসরে জোনি মে হ্যায়, তুমারে জেসা ভক্ত অগর ভজন করনে বালে হো তো এক কিস পিঢ়ি কা উদ্ধার হো জাতা হ্যায়, তুমারা পিতা তো দুসরে জোনি মে হ্যায়, এক টিকাকার কহতে হ্যায় কি আরে প্রহ্লাদ তুম আপনে পিতা কি বাত কর রহে হো, তুমারে পিতা কে পিতা কশ্যপ, আর কশ্যপ কে পিতা মরীচি, মরীচি কে পিতা ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মা কে পিতা মায়, তুমারে ভক্তি কে প্রভাব সে মেরা উদ্ধার হো গয়া, অভি একিস পিঢ়ি কা হুয়া, অভি তো পাঁচওয়া পিঢ়ি মে মায় হুঁ, অভি তুমারা পিতা হিরণ্যকশিপু কে পিতা কশ্যপ, কশ্যপ কে মরীচি, মরীচি কে ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মা কা মায়, অভি তুমারে ভক্তি কে প্রভাব সে মেরা উদ্ধার হো গয়া, তো ইস তরহ সে ভগবান কা ভক্তি শ্রেষ্ঠ মার্গ হ্যায় একদম, ভজন অগর কোই অর্থ সে অর্থ কি ভাবনা সে জিজ্ঞাসা সে কিসি ভি প্রকার করতা হ্যায়, তো আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব, স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব, আপনা চরণ কমল দে দেতা হুঁ, তো কবি কবি ভক্ত লোক প্রশ্ন করতে হ্যায়, ভাগবত মে এক প্রশ্ন হ্যায় কি লক্ষ্মীপতি কা ভক্ত সংসার মে গরিব দুঃখী দিখতা হ্যায়, আর ফক্কর বাবা কা ভক্ত ধনী দিখতা হ্যায় শিবজি কা, এসা কেউ, তো উত্তর দেতে হ্যায় সুখদেব গোস্বামী কি ও তমোগুণ কে আরাধ্য হ্যায়, তো তমোগুণ রজোগুণ কে ভাবনা সে সংসারিক বস্তু দে দেতে হ্যায়, লেকিন ভগবান নির্গুণ হ্যায়, संसारिक वस्तु देकर उनको तो संतोष होगा नहीं, इसलिए वो जब किसी विशेष भक्त पर कृपा करते हैं तो पहला काम करते हैं कि उसका धन हरते हैं, धन संपत्ति हर लेते हैं। एक भक्त तो हिंदी कवि कहा है कि नारायण जिस पर कृपा करता देत तीन महादान, रोगी और निर्धन करता जग में हो अपमान। उसको रोगी कर देते हैं विषय भोग की छीटी ही नहीं रह जाती, अब केवल जप करने की क्षमता है, अब भजन करो चुपचाप। ज्यादा स्वस्थ रहोगे तो विषय भोग भोगने के लिए इधर उधर दौड़ोगे। कर देते हैं रोगी, केवल जप करो भजन करो मंदिर में आओ। और धन जो 15 अनर्थों का जड़ है उस धन को भी छीन लेते हैं। धन आने पर बहुत लोग पाप करते हैं, तो रोगी और निर्धन करता जग में हो तो अपमान, जग में अब इंसल्ट कर देते हैं। ज्यादा जस बढ़ जाता है तो बहुत भीड़ भाड़ होता है, भजन नहीं होता। कबीर दास के विषय में प्रसिद्धि है काशी में कि जब कबीर रामानंद जी से दीक्षा ले लिए रामानंदाचार्य से, यद्यपि वो दीक्षा नहीं देते देना चाहते थे सामाजिक दृष्टि से कि भाई तुम मुस्लिम हो ब्राह्मण परिवार उद्विग्न होगा, तो गंगा के तट पर सोए हुए थे। एक दिन रामानंदाचार्य जी जा रहे थे स्नान करने, तो उनके रास्ते पर ही एक खेत का रास्ता था, खेत के मेड़ से जा रहे थे, लेटे हुए थे। तब तक कहे वत्स उत्तिष्ठ, राम नाम बोलो, उठो राम राम बोलो। तो कबीर जी उठ गए, जय गुरुदेव, राम राम, दीक्षा हो गया। ऐसे फॉर्मालिटी में दीक्षा नहीं दिए, वैसे कह दिए राम नाम बोलो उठो, तो बस हो गया दीक्षा। कबीर जी अब राम राम जपने लगे, तो कबीर की जस जब फैला बहुत लोग आने लगे उनके पास, तो कहे यार ये तो भजन में डिस्टर्ब हो गया, तब क्या करें। तो एक दिन वो गए वहाँ, काशी प्रसिद्ध है, एक मोहल्ला है स्पेशल वेश्याओं का, वहाँ गए। एक 16-18 वर्ष की ज्योति वेश्या को ठीक किए और तांगा गाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पर उसको बैठाए और बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख कर के सारा काशी में घूमो, चलो सारे गोदवलिया BHU सब जगह, काशी विश्वनाथ सब जगह चलो। लोग देख रही कबीरवा को क्या हो गया यार, ये क्या कर रहा है, ये पागल है वास्तव में, कुछ भी करता है। कहते ये तो बदमाश है ही, शुरू से ही बदमाश है, ये भक्त थोड़े है। सब लोग निंदा करने में कबीर का काम हो गया, अब भीड़ भाड़ कम हो गया, कबीर तो वेश्यागमन करता है। उनको कुछ करना नहीं था, केवल दिखाना था कि लोग जान जाए कि जग में अपमान हो जाए, कम कम भीड़ भाड़ होगा। तो इस तरह से भगवान इंसल्ट भी कर देते हैं, जग में हो तो अपमान। नारायण जिस पर कृपा करता देत तीन महादान, रोगी और निर्धन करता जग में हो तो अपमान। भगवान की स्पेशल कृपा है और भक्त लोग इसको कृपा मान लेते हैं। तो इस तरह से भगवान कृपा करके अपने चरणों में लगाते हैं। तो भगवान लक्ष्मीपति जरूर है लेकिन प्राकृत संपत्ति नहीं देना चाहते, जो फंसाने वाला है उसको नहीं देते हैं, सीधे अपना चरण कमल देते हैं। तो क्योंकि भगवान ही सारे धन संपत्ति सुख संपदा के उत्स हैं, जड़ हैं, देवताओं के जड़ हैं, सुख के जड़ हैं, तो इस जड़ को समझना चाहिए। हम वैष्णव को अनुकूल भाव से, हिरण्यकश्यपु तो प्रतिकूल का आचरण कर ही रहा है, इसलिए कह रहा है कि उस जड़ को मैं समाप्त कर दूंगा, देवता तो अपने आप सुख जाएंगे, सुख जाएंगे। तस्मिन कुटे हिते नष्टे कृत मूलय वनस्पतौ बिटपा इव सुष्यन्ति विष्णु प्राणा दिवोपसः। विष्णु देवताओं का प्राण है, जैसे वृक्ष के जड़ कटने से वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे विष्णु को मार्गदर्शन देने पर देवता लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। तो ये सिद्धांत बोल रहा है हिरण्यकश्यपु। इस बात को सभी वैष्णव को समझना चाहिए कि विष्णु सबके जड़ हैं, इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए। छोटे छोटे देवी देवता तांत्रिक फांत्रिक के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए, ये तुच्छ सुख देते हैं। भगवान अपना ओरिजिनल सुख देते हैं, अपना चरण कमल देते हैं, क्योंकि वही जड़ है, दूसरा दे भी नहीं सकता। आप अगर सोचें कि ये लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, नहीं, जब महाराज खटवांग स्वर्ग में मदद करने के लिए गए थे, महाराज जो बहुत सोते हैं, क्या नाम है, मुचकुंद महाराज। तो मुचकुंद महाराज को देवता लोग कहे कि भक्तों में अगर कोई ज्यादा सोता है तो उसको मुचकुंद कहते हैं, और दूसरे लोगों में कोई सोता है तो उसको कुंभकर्ण कहते हैं। कुंभकर्ण भक्तों को नहीं कहना चाहिए, कुंभकर्ण असुर है। अगर भक्त ज्यादा सोए तो कहे मुचकुंद महाराज जगिए, भगवान का टाइम हो गया। मंगला आरती, मुचकुंद महाराज जब देवता लोग कहें कि आपको क्या चाहिए, हम कुछ देना चाहते हैं, तो मुचकुंद महाराज हंसने लगे, आप लोग क्या दोगे, हमसे मदद लेने के लिए तैयार हो क्या दोगे। तो कहे कि नहीं, हम देना चाहते हैं, आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो कहे हमको बैकुंठ दे दो। तो कहे ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो जब तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो क्या दोगे, मैं थक गया हूँ, मुझको गाढ़ निद्रा दो, कोई डिस्टर्ब ना करे, जब मेरा नींद खुले तो भगवान का दर्शन हो। तो ये व्यवस्था कर दिए देवता लोग, भारतवर्ष में आकर एकदम गुफा में सोए और जब नींद खुला तो भगवान को देखे। तो देवता लोग व्यवस्था किए कि बीच में कोई डिस्टर्ब कर देगा, आपकी दृष्टि पड़ जाएगा तो जल जाएगा, भगवान ही केवल सुरक्षित रह सकते हैं आपके दृष्टि के सामने। तो भक्त लोग अगर मंगला आरती के टाइम सोए तो कहना चाहिए भगवान आ गए हैं, मंगला आरती में दर्शन देंगे, उठिए मुचकुंद महाराज, उसको कुंभकर्ण नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं उठाने वाला भक्त होता है। वो काल जवन थोड़े है कि भस्म होगा। भगवान और भक्त में कुछ सेंस में अंतर नहीं है। और कहीं कहीं भक्त लोग भगवान से विष पड़ते हैं, जो क्षमता भगवान के पास नहीं है वो क्षमता भक्तों के पास है। भगवान सर्व साधारण पर कृपा नहीं करते और भक्त लोग इसकी अपेक्षा नहीं रखते, किसी पर भी कृपा कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस सेंस में भक्त लोग भगवान से बड़े कृपालु हैं। भगवान की एक अद्भुत शक्ति जो कृपा शक्ति है वो भक्तों के अंदर उतरती है, इसलिए भक्तों को ही डिवाइन ग्रेस कहते हैं। भगवान की स्पेशल कृपा की मूर्ति श्री कृष्ण कृपा से मूर्ति श्री प्रभुपाद को कहा गया है। भगवान की कृपा मूर्ति ही भक्त के रूप में आती है, तो वो कृपा मूर्ति भगवान के समान शक्तिशाली होती है। तो इस तरह से भक्तों को देखिए, मैं यह कहना चाहता था कि देवता लोग चाह कर भी भगवान के धाम नहीं दे सके मुचकुंद को, न खटवांग को। खटवांग महाराज कहे कि मुझको भेज दो साकेत, मैं अपने शक्ति से वैकुंठ जीत लूंगा, तुम लोगों के पास नहीं क्षमता है। तो यहाँ आए सरजू जी में आचमन किए और केवल ढाई घड़ी में, मतलब एक घंटा में, 24 मिनट का एक घड़ी होता है, ढाई घड़ी मतलब एक मिनट 60 मिनट में भगवान में अपना चित लगाकर वैकुंठ चले गए खटवांग महाराज। सबसे कम टाइम में खटवांग महाराज भगवान को प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार जो क्षमता देवताओं में नहीं है, किसी देवता में नहीं है, वह भगवान में है। इसलिए भगवान सबके जड़ है और उस जड़ को पकड़कर भजन करना चाहिए, हिरण्यकश्यपु के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। विष्णु प्राणा, विष्णु ही सबके प्राण है, देव कसा, तो उस प्राण को स्वीकार करके भजन कीजिए। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राम। अब तो ज्यादा देर हो गया, अभी जिज्ञासा का टाइम है। एक बार बिहार में महाराज कथा कर रहे थे गांव में पहाड़ में, तो कथा तो एक घंटा की है लेकिन प्रश्नोत्तर डेढ़ घंटा हो गया, रात के समय ज्यादा देर हो गया। 9 बजे कथा किए, खत्म किए 10:30 बज गया प्रश्नोत्तर करते हुए। तो एक व्यक्ति खेत में, बूढ़ा था, खेतों में कोई सुअर या जंगली जानवर खेतों को चरने आते हैं, उसकी रक्षा के लिए बेचारा जा रहा था, बैठ गया कथा में। देर होने लगा तो बूढ़ा भी खड़ा हुआ, महाराज जी हमारो एगो प्रश्न बा भोजपुरी, हमार भी एक प्रश्न है। तो कहने महाराज के, हाँ बोली, ई कब खत्म हुई। तो जब ज्यादा देर हो जाता है तो यह प्रश्न सबके मन में आता है, बंद कब होगा। तो महाराज कहे बस बस बंद हो गया है, पहले आप प्रश्न कर दिए होते तो पहले ही बंद हमारा खेत पर जाए के बाद देरी होता है, ठीक है बंद हो गया। तो अब 9:30 बज गया तो ये प्रश्न तो सबके मन में है कब बंद होगा। क्या प्रश्न है?
एक प्रश्न, भगवान को इस संसार में से 4 प्रकार के भक्ति प्राप्त मिलते हैं, तो कुछ अकाम भक्ति मिलते हैं संसार में से?
क्या क्या?
भगवान को 4 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं जो भगवान के पास जाते हैं, हाँ। तो कुछ अकाम भक्ति मिलते हैं भगवान
संसार? क्यों नहीं, अकाम भक्त मिलते हैं, इसी संसार में आए थे ना सुखदेव गोस्वामी, उनको तो किसी चीज की कामना नहीं था, आत्मा राम मत्स्य मुदया निर्ग्रंथा पिरुक्र में। लेकिन भक्ति उसको कहते हैं कि भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाना, ऐसा नहीं कि एकदम विरक्त हो जाना, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मतलब भगवान भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। एक प्रवचन करने वाले कहे कि अगर भगवत गीता का 1 श्लोक अपने जीवन में धारण कर लेंगे, अगर संभव नहीं है तो आधा श्लोक भी, चौथाई श्लोक भी जो अपने जीवन में धारण कर लिया उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो एक आप जैसा ही तार्किक वहां बैठा था, तो वो कहा कि महाराज जी मैं तो पहले से ही चौथाई ग्रहण किया हूं, तो क्या सर्वधर्मान परित्यज, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो कहे कि अरे अरे गलती हो गया, इससे थोड़े काम बनेगा। तो इस संसार में बहुत से लोग हैं, भक्ति कहते हैं भगवान में आसक्त होना, जैसे अपनी स्त्री में, बच्चे में, पद पोजीशन में, धन में आसक्त है, वह जीव का स्वरूप भूत आसक्ति है, उस आसक्ति की धारा भगवान में बदल दें। तो आत्मा रामस्य मुनय निर्गंथा पिरुक में संसार के लिए कहा गया है, इसमें कुछ लोग अपने आप में रमण करते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी रमण करते थे। आत्मा राम का अर्थ केवल सुखदेव नहीं, अपने देह में भी जो मस्त है उसको आत्मा राम कहा गया। आत्मा राम श्लोक की व्याख्या महाप्रभु किए हैं सनातन गोस्वामी के, सार्वभौम भट्टाचार्य 2 बार, 1 बार 18 प्रकार अर्थ किए, 1 बार 61 प्रकार। तो आत्मा राम का अर्थ है जो अपने में मस्त है, और कुछ नहीं चाहिए, बाहर का चीज चाहिए ही नहीं, पागल लोग भी आत्मा राम रहते हैं, जो मन करता है वही करते हैं। लेकिन मुख्य बात है कि इत्थम भूत गुणो हरि ही, भगवान हरि की विशेषता है कि ऐसे लोगों का भी चित्त खींच लेते हैं। जब भगवान की कथा अच्छी लगने लगे, भगवान का रूप अच्छा लगने लगे, भगवान के भक्त अच्छा लगने लगे, भगवान का धाम अच्छा लगने लगे, तो इसको भक्ति कहते हैं। यह है निर्गुण प्लेटफार्म, और सभी भक्तों को ये प्राप्त होता है। अभी जो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी जो हैं, उनका प्राथमिक स्टेज है अर्थ चाहना। अर्थार्थी भक्त भी निष्काम हो ही गया ना ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज मैं आपके अलावा कुछ नहीं चाहता, ये निष्कामता है, यह साधारण संसारी कामना नहीं है। और आप कहते हैं संसार में भी होते हैं, अभी मैं सुनाया कि प्रहलाद निष्काम भक्त ही थे ना, लेकिन निष्काम का अर्थ जान जाइए, भगवान की इच्छा से सब कुछ करते हैं, कामना नहीं है, कामुकता नहीं है, लेकिन विवाह करते हैं, क्रोध नहीं है लेकिन युद्ध करते हैं, अर्जुन को कोई क्रोध नहीं लेकिन भगवत प्रत्यर्थ ब्राह्मणों का वध किए, उनको कोई क्रोध नहीं है लेकिन अर्जुन भगवान के लिए महाभारत किए, भगवान की प्रीति के लिए आजाद शत्रु महाराज युधिष्ठिर युद्ध किए, उनको क्या युद्ध की कामना थी, लेकिन भगवान की इच्छा समझ कर किए। और निष्काम प्रहलाद भी विवाह किए, कुछ नहीं चाहिए फिर भी किए। तो हनुमान जी को क्या इच्छा थी, लंका जला दिए क्रोध में। भगवान की सेवा के लिए भक्त लोग करते हैं, भक्त लोग भी वही काम करते हैं, उसी तरह की आसक्ति रखते हैं, लेकिन अंतर है कि इनकी आसक्ति बंधन युक्त नहीं है। भगवान कपिल देव कहते हैं प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पावितम। कहते हैं माताजी जो संसार की आसक्ति है ना, संगम माने आसक्ति, भागवत में एक बार में सुन लीजिए, जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर जहां भी संग शब्द आया है उसका अर्थ करते हैं आसक्ति, संगम आसक्ति, भक्त संग या संसार संग, तो कहते हैं कि जो संसार का संग है वो बंधन है, अजर अमर पास है, लेकिन वही भाव भक्तों के साथ करने पर बंधन खुल जाता है। सएव साधु सुकृत मोक्ष द्वारा मपावे तुम। तो ये संसार में जो आसक्त लोग हैं, जो आपको दिखते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ज्ञानी माने निष्काम, चार में ज्ञानी भी हैं, जो एज इट इज समझता है संसार के पोजीशन और भगवान के पोजीशन, उसको ज्ञानी कहते हैं। आप ये मत समझिए कि चार में निष्काम नहीं है, चार में ज्ञानी भी है, और जिज्ञासु अलग है जो जानना चाहता है, आरती अलग है, लेकिन किसी भी भावना से गजराज ने आर्त भाव से भगवान को पुकारा, वैकुंठ गया ना, द्रौपदी आर्त भाव से भगवान को पुकारी। जो जैसा स्टैंडर्ड है देखा देखी नकल नहीं करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है उसी से भगवान का भजन करना चाहिए। स्थानीय स्थिता तनवांग मनोभी, अपने स्टैंडर्ड में स्थित होकर मन भगवान में लगाना है। हमारा स्टैंडर्ड प्राइमरी का है, हम डिलीट क्लास के पुस्तक लेकर घूमेंगे दिखाने के लिए, समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे मन में संसार की कामना है तो इन्हीं से मांगिए, ये कामना दूर करेंगे, आपको निष्काम बना देंगे, भक्ति निष्काम बना देगी, निर्गुण है भक्ति, निर्गुणा है, प्राकृत नहीं है, इसलिए वो निर्गुण बनाकर ही मानेगी। प्रारंभ में थोड़ा दिक्कत भले होगा लेकिन बनाकर मानेगी, तो सभी भक्ति निष्काम हो सकती है, देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उससे वो लोग संतुष्ट भी नहीं होते, नाराज भी हो जाते हैं। अब दूसरे की बात तो छोड़िए, स्वयं सती पार्वती एक बार भगवान शिव से कह दी कि आप दशरथ के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान तो आप हैं, तो अपनी अर्धांगिनी सती को भी भगवान नहीं स्वीकार किए शिव। वो कही कि नहीं, मैं परीक्षा लूंगी कि भगवान है। तो कहे कि क्यों जिद करती हो, मैं कह रहा हूं कि मेरे सर्वाराध्य हैं, ये उनकी लीला है। सर्वाराध्य कैसे है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, घूम रहा है जंगल में और कह रहे हैं कि भगवान है। कह रहे पागल, वो इनकी लीला है। ये कौन लीला है कि पत्नी को दूसरा ले गया रावण और रो रहा है बन बन में। तो कहे तुम्हारे दिमाग के बाहर है, बक बक मत करो, चुपचाप चलो। तो कहते हैं कि नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। तो जब नहीं मानोगी तो जाओ परीक्षा लो। शिव जी बैठ गए एक पेड़ के पास, वो गई परीक्षा लेने, और परीक्षा इतना हार्ड पेपर दे दी कि स्वयं सीता बन गई। सोची कि देखेंगे राम तो कहा अरे मेरी प्रिया कहाँ गई थी, ऐसा कहेंगे। लेकिन भगवान देखते ही कहे नमस्कार माते, अकेले क्यों घूम रही है, शिव जी किधर है। लो अब तो एकदम हक्का बक्का हो गई, चुपचाप मुंह लटका कर शिव जी के पास आ गई। शिव जी कहे क्या हुआ, हो गया परीक्षा। नहीं, एक तो गलती की कि सीता का रूप धारण की, दूसरी गलती करती है झूठ बोलती है, कहती है नहीं मैं भी नजदीक जाकर आप जैसे प्रणाम करके आ गई। तो शिव जी कहे कि अच्छा, मैं दूर से प्रणाम किया तो नजदीक से गई। तो शिव जी समाधि में देख लिए कि अरे अरे तो सीता का रूप धारण की थी। कहे सती, अब इस शरीर से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं, तुमने बहुत भारी गलती की, मेरी आराध्या सीता का रूप धारण कर ली। तो जब अपनी पत्नी सती को भगवान शिव क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर अगर कोई उनको सुप्रीम पर्सनालिटी कह दे तो उसका हाल क्या होगा। कोई कितना हो किसी की प्रशंसा करे, प्रशंसा करते करते कह दे कि अरे मैं आपको बहुत मानता हूं, मैं तो इतना मानता कि आप अपने बाप के भी बाप हैं, ये प्रशंसा है कि गाली है, प्रशंसा नहीं है ना। तो शिव जी की प्रशंसा ये नहीं है ना कि वो सर्वाराध्य है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है, अगर उनको सुप्रीम पर्सनालिटी कोई कहता है तो अपराधी है, ऐसा नहीं है। जो दूसरा नाम अपराध है, दूसरा ही है शिव ब्रह्मा आदि, तो उसकी व्याख्या करते हुए महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे एक बहू को, विवाहिता लड़की को शिक्षा दिया जाता है कि अपने ससुराल में सास ससुर देवर भसुर जितने लोग हैं पति आदि सबकी सेवा करनी चाहिए और उसको करना चाहिए, करती भी है, लेकिन जो संबंध उसका पति से है वह संबंध परिवार के किसी मेंबर से नहीं, भले ही पिता का बाप ही क्यों ना हो, या पिता पति का बाप ही क्यों ना हो, या पति का बड़ा भाई क्यों ना हो, उसका सम्मान करेगी सबका, लेकिन वह संबंध नहीं रख सकती जो पति के साथ है। तो सारे देवी देवता सम्माननीय हैं, लेकिन पति तो श्री कृष्ण है, तो ऐसा संबंध किसी के साथ, सम्मान सभी देवताओं का करना है लेकिन इनके साथ है स्पेशल, यह संबंध किसी देवताओं के साथ नहीं संभव है। अगर ऐसा करता है तो व्यभिचार है। अगर कृष्णेतर किसी देवताओं को आराध्य मानता है तो यह भक्ति नहीं व्यभिचार है, वैसे ही व्यभिचार है जैसे एक पतिव्रता स्त्री के द्वारा अगर किसी दूसरे से संपर्क हो तो इसको ध्यान रखना चाहिए, नाम अपराध को समझना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री।